समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिससे आपका है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून अथर। अथर, एग्जैक्टली 49 ईयर्स बैक द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑन द 16th of May 1975, फॉर्मली मेकिंग सिक्किम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया एंड डिपोजिंग द चोग्याल्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव ग्रीटेड द पीपल ऑफ सिक्किम ऑन देयर स्टेटहुड डे टुडे। And Sikkim, though one of the youngest and smallest states of the country, has made remarkable progress and has successfully emerged as one of the leading states in many sectors.
बिल्कुल, स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर सभी को हम भी शुभकामनाएं देते हैं। सिक्किम बहुत सुंदर प्रदेश है अनुजा।
जी हाँ अथर, and it still continues to contribute immensely to the nation building, so wishing newer heights of growth, prosperity and development for the people of the state, and please accept our warm greetings from the Akashwani family to all the people of Sikkim. And now we begin with the news headlines first. Election canvassing in full throttle as top leaders hold back-to-back rallies for the fifth phase of Lok Sabha elections.
Odisha mein hinsa ke karan chunav prachar prabhavit hua. Ganjam zile mein jhadap mein ek bhajpa karyakarta ki mrityu aur 8 ghayal.
Jharkhand Rural Development Minister Alamgir Alam remanded to 6-day ED custody in Tender Commission scam.
Dakshin pashchim monsoon ke 31 mai ke aaspaas Kerala pahunchne ki sambhavana hai.
Indian football legend Sunil Chhetri announces his retirement from national team.
और IPL क्रिकेट में हैदराबाद में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से।
And Athar, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level.
बिल्कुल.
And today we will talk about International Day of Living Together in peace. This topic is very much the need of the hour, I would say.
Anuja, isme agar main chhodu jodu to hum shanti ke talash mein kya kuch nahi karte, pahad jate hain, van mein bhatakte hain aur phir bhi hamara man jo hai chitt nahi hota. Kai bar hum sadhana karte hain, varshon ki sadhana karte hain, phir bhi hamara chitt shant nahi hota. Karan hamari ichhaen hain, aakankshaen hain, hamare shauk hain, hamara lalach hai, hai na?
Yes, in fact, living together in peace is all about accepting differences, Athar.
बिल्कुल.
अकेले भाग के कहां तक जाएंगे?
सही.
And in fact, to accept the differences with the people living around us and having the ability to listen to them, recognize it, respect them and appreciate others, as well as living in a peaceful and united way.
बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुजा। यदि हमारे धैर्य हमारे पास हो, संयम हमारे पास हो, संतोष हमारे पास हो, एक नर्म दिल हमारे पास हो, दूसरों से प्रेम करने का जज्बा हमारे पास हो और दूसरों का भला चाहने की इच्छा हमारे पास हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें शांति नहीं मिले।
राइट. Peace plays a crucial role in maintaining social stability by preventing conflicts, and when societies prioritize peace, they actively attempt to address the root causes of conflicts, such as unequal resource distribution or ethnic tensions. Addressing these issues can create an environment that fosters mutual understanding and discourages violence. And for this, the UN General Assembly declared 16th of May the International Day of Living Together in Peace as a means of regularly mobilizing the efforts of the international community to promote peace, tolerance, inclusion, understanding and solidarity.
बिल्कुल, ये दिन विविधता, संवाद और सांस्कृतिक पुलों को बढ़ावा देने में बहुत महत्व रखता है अनुजा। ये शांति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हिंसा, भेदभाव और बहिष्कार की अस्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। ये हमें एक न्याय संगत, समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा से शांति की वकालत की है। भारत ने हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने की बात की है। और हम क्यों भूल जाते हैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने हमेशा विश्व शांति की वकालत की है। अनुजा,
राइट, द डे इनवाइट्स कंट्रीज टू फर्दर प्रमोट रिकंसिलिएशन टू हेल्प टू इंश्योर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बाय वर्किंग विद कम्युनिटीज faith leaders and other relevant actors through reconciliatory measures and acts of service and by encouraging forgiveness and compassion among the individuals.
Please,
आप कुछ कह रहे थे?
दरअसल मैं इसी विषय पर कुछ आगे जोड़ना चाहता हूँ। संसार की जो विलासिता है अनुजा, जो चमक है, जो लोभ है, दिखावा है, वो हमें शांत होने नहीं देता, है ना?
Right, and the importance of peace in our world cannot be overstated. It serves as a foundation for social stability, human rights, and also the well-being of individuals and communities across the globe. Without peace, we cannot do anything. By fostering a culture of peace, we can create an environment where everyone has the opportunity to prosper and live fulfilling lives.
Anuja, agar hum vishwa paridrishya ki baat karein, to dutiya vishwa yuddha ke baad, Sanyukt Rashtra ne bhavishya ke yuddhon ko rokne और वैश्विक असमानता को संबोधित करने में उसके महत्व को महत्ता दी। शांति और समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2001 से 2010 तक दुनिया के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक जैसे प्रयास शुरू किए। 1999 में शांति की संस्कृति पर कार्रवाई की घोषणा की गई और कार्यक्रम को अपनाने से लंबे समय तक चलने वाली शांति और अहिंसा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
राइट, इनफैक्ट अथर पीस इज वाइटल फॉर द वेल बीइंग एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड ऑल द नेशंस एज वेल। अ पीसफुल एनवायरमेंट फॉस्टर्स सोशल स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड डिप्लोमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग आर क्रूशियल टूल्स इन द परस्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस ग्लोबली। फॉर एग्जाम्पल, peace building efforts can promote dialogue between groups with differing perspectives, for fostering a shared responsibility for resolving conflicts, and when individuals feel heard and respected, they are more likely to engage in constructive communication instead of resorting to violence.
वैश्विक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम व्यक्तिगत एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं अनुजा। तो आज सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम परेशान हैं। अगर आप देखें दुनिया में लोगों को, एक दूसरे को देखें, तो शिकायत करते हैं कि शांति नहीं मिलती। दरअसल शांति तो अनुजा हमारे अंदर है। हम क्यों शांति के लिए पहाड़ पर जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, जंगल में भटकते हैं, दूसरे यत्न करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि यदि आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी के बुरे वक्त में आप साथ देते हैं, तो विश्वास कीजिए मेरा, आपको शांति जरूर मिलेगी। एक अनोखी सी खुशी का आपको एहसास होगा और यही विश्व को चाहिए आज।
जी, एंड अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीस फॉर सोशल स्टेबिलिटी इज इट्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
जी,
In times of peace, your society can focus on critical areas like infrastructure development, education and healthcare, and as a result, your country becomes more prosperous and provides better opportunities for everyone. And in a peaceful environment, businesses can thrive and people can invest in their future without fear of losing their assets to violence or unrest. And this fosters innovation, it creates jobs, and ultimately raises the overall standard of living of the people there. And by emphasizing the importance of peace, we can help usher in economic progress and social stability for future generations.
अनुजा, अगर विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि कई देश युद्ध की विभीषिका से त्रस्त हैं, आजकल हम देखते हैं कि कुछ देश तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और कुछ शांति प्रिय देश उनसे शांति स्थापित करने की अपील भी कर रहे हैं। दरअसल आज एक होड़ सी लगी है अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की, अपने को बड़ा दिखाने की, और जिसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं कि शांति की तलाश में तमाम लोग हैं। एक विश्व शांति की जो मशाल हमने रोशन की है, भारत देश ने हमेशा से शांति की वकालत की है, अहिंसा की वकालत की है, तो आज भी हमारा स्टैंड वही है कि विश्व शांति स्थापित हो। और मेरा तो मानना यह है अनुजा, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी मेरा मानना यह है कि आज दुनिया को किसी चीज की यदि सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। और जब प्रेम अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं शांति भी आपके आसपास जरूर होगी.
राइट. सो कंसिडरिंग द वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वी लिव इन टूडे, द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टूगेदर इन पीस इज एन इम्पॉर्टेंट डे टू कम टूगेदर एज वर्ल्ड सिटीजन्स एंड दे एग्जिस्ट पीसफुली इन दिस वे एंड ऑल फेथ्स एसेंशियली प्रीच अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस ऑफकोर्स. सो इट इजंट इनफ टू टॉक अबाउट पीस अथर, वन मस्ट बिलीव इन इट. And it isn't enough to believe in it, one must work at it. This was well said by Eleanor Roosevelt.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है.
राइट. एंड The Indian satellite Aditya L1, observing the activities of the sun, had captured a powerful solar storm that impacted the Earth in early May. And this biggest geomagnetic storm since 2003 had generated multiple X-class flares and coronal mass ejections during the first week of May. The National Atmospheric Research Laboratory at Gadangi in Andhra Pradesh had received the data on this biggest geomagnetic storm. Our correspondent has more details on the impact of this abnormal heat on the ISRO satellites in space. So let's hear what our correspondent has to say.
The payloads on board Aditya L1 satellite had captured the enhancement of the alpha particle and proton flux of the solar wind. It observed multiple X and M class flares from Sun. Another ISRO satellite, Chandrayaan-2, orbiting the Moon, also captured this rare phenomenon. The scientists observed the impact of this geomagnetic storm on satellites orbiting around Earth. They observed large solar flares manifested as spikes. The upper atmosphere had expanded due to the energy released from the Sun, posing threat to the satellites losing their altitude gradually. The Master Control Facility in Karnataka also monitored its payloads to see whether extreme solar heat would harm the payloads. Due to the solar storm, the one-sided panel developed variations requiring frequent momentum dumping. The sensors were turned off till the storm subsided. ISRO has said that the solar heat caused orbit decay of all its satellites by 5 to 6 times. Orbit decay means the satellites gradually decrease their altitude. However, these geomagnetic storm had no significant degradation in the Navic services that provides GPS coordinates in India. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में हरियाणा में, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. आइए सुनते हैं आकांक्षा सक्सेना की इस पर यह रिपोर्ट.
इस दौरान पुलिस अधिकारियों को 3 नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई. इस प्रेजेंटेशन में नए कानूनी प्रावधानों के लिए किए गए बदलावों को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया गया था. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि इन 3 नए कानूनों को लेकर प्रदेश में अब तक 3500 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं. इसके अलावा जिलों में अब तक 7,236 अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. इन 3 नए कानूनों को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में हरियाणा पुलिस के जवानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10-10 दिन का कोर्स डिजाइन किया गया है, जबकि साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर पुलिस कर्मियों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. श्री शत्रुजीत कपूर ने कहा कि इन नए कानूनों को लागू करने में फील्ड में कार्यरत थाना प्रभारियों तथा अनुसंधान अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. पुलिस उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक इन नए कानूनों के बारे में थाना प्रभारियों तथा अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि ये थाना प्रभारी तथा अनुसंधान अधिकारियों से 30 जून से पहले ट्रायल के तौर पर मॉक इन्वेस्टिगेशन करवाना सुनिश्चित भी करेंगे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ऑडियो वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्यों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया की व्यवस्था बनाई जा रही है. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना.
And Arthur, if you recall, we had it in the news that a large number of pilgrims are arriving for the Char Dham Yatra this year. But due to lack of information, many pilgrims are coming to Uttarakhand for pilgrimage without registration, for which letters are being sent to the chief secretaries of all the states. Actually, in Uttarakhand, pilgrims cannot undertake the Char Dham Yatra without registration. Stringent checking will be done at barriers and other points, and those without registration will not be allowed to proceed for the pilgrimage. And for this, the Chief Secretary of the State, Radha Rathuri, mentioned that Chief Secretaries of all the states are being informed through letters to create awareness among the pilgrims coming from their respective states regarding the registration process for the Char Dham Yatra, which is a must.
पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी, जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है।
एंड कीपिंग द जनरल इलेक्शंस गोइंग ऑन इन माइंड, इन आवर सीरीज ऑफ की कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा पोल्स, टुडे वी ब्रिंग यू अ रिपोर्ट ऑन Sundargarh Parliamentary Constituency in Odisha. The constituency is going for polls in the fifth phase of general elections on the 20th of this month. More from our correspondent.
Sundargarh district is known for its dense forests and mountains, and Sundargarh Lok Sabha constituency is reserved for scheduled tribes. In the elections since the 90s, sometimes Congress and sometimes BJP have won Sundargarh Lok Sabha seat. Frida Tapno of Congress had won the parliamentary elections of 1991 and 1996, but in the 1998 general elections, BJP opened its account by winning this seat. Tribal leader Jewel Oram was elected as member of parliament from Sundargarh seat. Jewel Oram completed his hat-trick by winning the parliament elections of 1999 and 2004. After the win in 2004, Jewel Oram became country's first tribal affairs cabinet minister in the Atal Bihari Vajpayee government. But in the 2009 general elections, Jewel Oram had to face defeat. Congress candidate and former chief minister of Odisha, Hemanand Biswal, defeated Jewel Oram in a tough fight by a margin of 11,624 votes. In the 2014 parliamentary elections, BJP once again fielded Jewel Oram. He defeated BJD candidate and former Indian hockey team captain Dilip Tirki by a margin of 18,829 votes. BJP retained this seat in 2019 elections also. Jewel Oram achieved his big victory this time. He defeated BJD by a margin of 2,23,065 votes. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
लोकसभा चुनावों के लिए प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में हम पश्चिम बंगाल के हावड़ा संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में हावड़ा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होगा। इस सीट पर 7 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र हावड़ा जिले के अंतर्गत हैं। इस सीट पर 17 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें लगभग 8,59,000 महिला मतदाता शामिल हैं। हावड़ा लोकसभा क्षेत्र 2009 से तृणमूल कांग्रेस के पास है। टीएमसी सांसद अंबिका बैनर्जी के निधन के बाद 2013 के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बैनर्जी ने ये सीट जीती थी। हावड़ा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रसून बैनर्जी को फिर से टिकट दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। कांग्रेस समर्थित सीपीआईएम उम्मीदवार सभ्य साची चटर्जी है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को अधिक मत मिले थे, जबकि वाम दलों का वोट प्रतिशत घटा था। 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के वोट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पश्चिम बंगाल से कल्याण राहा की रिपोर्ट के साथ विजयलक्ष्मी कासोजिया।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
16th May is celebrated as Sikkim Day, as on this day in 1975, Sikkim became part of India.
Initially, Sikkim was under Chogyal dynasty rule during the 17th century. However, by 1890, it became a protectorate state under British rule, who used it as a buffer state between China and British India. In 1947, as Sikkim became a part of India unofficially, its foreign policy, security and communication came under the realm of India while maintaining its independence at the same time.
In 1973, the people started demanding a responsible government and a civil disobedience movement was established against the monarch. A referendum was held in which 97.5% of voters supported abolishing the monarchy. This led to Sikkim's official merger with India. To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.
First, the 35th Amendment laid down a set of conditions that made Sikkim an associate state. A month later, the 36th Amendment repealed the 35th Amendment and made Sikkim a full state, adding its name to the first schedule of the Constitution.
We remember freedom fighter Bhim Bordeori, who was born on the 16th of May 1903. Bhim Bordeori struggled for the socio-economic educational development of Assam, uniting all the communities of the state. He also fought and ensured Assam's integration into India.
A lawyer by profession, Deori helped found the Assam Backward Plains Tribal League in 1933. He worked to ensure that indigenous Assamese people were allotted land. Deori was one of the main architects of the famous Khasi Darbar Hall resolutions held in March 1945, where indigenous leaders of different ethnic identities resolved resolutions to restore their independent homelands.
He led Northeast India towards a new vision of development while maintaining the independence of different tribes. Bhim Bordeori continued to fight for the rights of indigenous people till the end.
And in the business news today, the benchmark indices Sensex and Nifty rose nearly 1% amid positive cues from the global share markets. The BSE Sensex gained 677 points or 0.93% to close at 73,664. The NSE Nifty slipped 203 points or 0.92% and settled at 22,404. In the global crude market, Brent crude is trading at $82.33 per barrel. WTI crude is trading at $78.22 per barrel when reports last came in. अब स्पोर्ट्स की फील्ड से आपके पास क्या है आतर?
बिल्कुल अनुजा, चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। बैडमिंटन में भारत के मीराबा लुवांग बैसनाम आज बैंकॉक में प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 21 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसेन को सीधे सेटों में 21-14, 22-20 से हराकर सुपर 500 टूर्नामेंट में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में भारत की अश्मिता चालिहा का आज दूसरे दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की हान यू से मुकाबला होना है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी राउंड 16 में जी हाओ नान और जेंग वेई हान की जोड़ी से भिड़ेंगी। महिला डबल्स में तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का मुकाबला ताइवान की जू हंग और यू पेई लिन से होगा। दूसरी जोड़ी ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता अपर्णा पांडा की जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रिन इवानागा और की नाकानीश से खेलेंगी।
In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will lock horns with Gujarat Titans at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Hyderabad today, and the match will begin at 7:30 this evening. Yesterday, Punjab Kings beat the Rajasthan Royals by 5 wickets in Guwahati.
भाला फेंक खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में कल फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वो तीन राउंड के बाद दूसरे स्थान पर रहे। चौथे राउंड में उन्होंने 82.27 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं गोपाल चंद्र प्रहलाद को।
राइट अथर, गोपाल चंद्र प्रहलाद वॉज अ राइटर इन द उड़िया लैंग्वेज, वेल नोन एज द कंपाइलर ऑफ द पूर्ण चंद्र उड़िया भाषा कोश। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू उड़िया लिटरेचर बाय हिज वर्क्स इन प्रोज। अ लॉयर बाय प्रोफेशन, प्रहलाद रोट सेवरल सटायरिकल एंड एनालिटिकल एसेज इन मैगजीन सच एज उत्कल साहित्य, रसचक्र, नव भारत एंड सत्य समाचार ऑन द सोशल, पोलिटिकल एंड कल्चरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्ररी ओडिशा ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। एंड टूडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फणी मजूमदार अथर। ही वॉज अ पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा वर्किंग इन द लेट 1930s एंड हियर बिटवीन 1936 एंड 1939 न्यू स्टैंडर्ड्स वर सेट बाय हिम फॉर इंडियन मोशन पिक्चर्स इन अ सीरीज ऑफ reflective lyrical films that brought cinema closer to life and literature. Majumdar's contribution was Street Singer in the year 1938, a melancholy love story, his debut and a classic of Indian cinema. Its male lead, Kundan Lal Sehgal, sang his immortal song, Babul Mura Nahi Hara Chuto Jaa.
Kya baat hai, iske alawa kai sari aur filmein hain, jaise Meena Kumari ki classic film Aarti, aapko yaad hogi, jo 1962 mein aayi hai. Iske alawa Unche Log, jo 1965 mein aayi hai. उनमें भी फणी मजूमदार के काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और खास बात यह है कि बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामांकित किया गया। ये वो निर्देशक हैं। तो एक
राइट और हमने जी हाँ, आरती मूवी के आपने जिक्र किया है, उसी का ही काम है।
क्या बात, और अब आज जन्मदिवस की, तो आज जाने माने साहित्यकार शानी का जन्मदिवस है। शानी का पूरा नाम गुलशेर खान शानी है। वो प्रसिद्ध कथाकार और साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य और साक्षात्कार के संस्थापक संपादक थे। अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा रूसी, लिथुवानी, चेक और अंग्रेजी में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। शानी मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से भी सम्मानित किए गए, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कृत साहित्यकार रहे हैं। उनकी अगर रचनाओं की बात करें तो एक से बढ़कर एक उन्होंने रचनाएं हमें सौंपी हैं, जैसे सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी और काला जल आदि।
राइट, एंड टुडे वी ऑल्सो रिमेम्बर मंगलेश डबराल, हु वॉज एन हिन्दी poet and journalist. He was associated with Hindi language newspapers including Jansatta, Hindi Patriot and Purvagrah. Some of his popular works include Peher Par Lalten, Ghar Ka Rasta and Kavi Ka Akelapan. He was a recipient of the Sahitya Academy Award in the year 2000 for his anthology Hum Jo Dekhte Hain. Dabra's poetry has been translated in all major Indian languages and a number of foreign languages including English, Russian, German, Dutch, Spanish, Portuguese, Italian, French and Bulgarian.
आज ही भाषाविद कर्मशी जेठा भाई सोमैया का भी जन्मदिवस है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है जिसके लिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 2000 में समाज के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कई कॉलेजों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कर्मशी जेठा भाई सोमैया जी एक सामाजिक व्यक्ति थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया।
Right, and today we also wish a very happy birthday to the actor who showed his intense acting skills in Masaan, in Sam Bahadur, in Razi, in Uri, the Surgical Strike, in Sardar Udham. He turns 36 today. Yes, I am wishing a very happy birthday to Vicky Kaushal.
उस रात मैंने मौत देखी, एक बस वही अपनी थी, फिर सब अपने हो गए। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे ग्रंथी जी ने मुझसे कहा, पुत्र जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है, अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस तोहफे को जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है। पूछूंगा उनसे मेरी जवानी का कोई मतलब बना या जाया कर दी।
क्या बात है, गजब की उनका अभिनय रहा है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित रहे हैं और फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में उनको प्रदर्शित किया गया है।
डेफिनेटली ही हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ हिज जनरेशन।
और श्रोताओं समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।